ओम शांति। भट्टी का शुभारंभ हमारे आदरणीय राय योगनी शिलू दीदी जी ने किया। आज पुण्य जबकि भट्टी अंतिम पड़ाव में है, लास्ट दिन, तो विशेष टॉपिक को लेकर कि निरंतर शक्तिशाली योग युग स्थिति कैसे रहे, इस विषय को लेकर हमारे बीच में पुण्य पधारे हैं। हम आदरणीय दीदी जी का वेलकम करते हैं, वारम वेलकम 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 आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। 5:30 बजे रोज हम ये गीत सुनते हैं, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो योगी जीवन कितना प्यारा है वो आपने अनुभव किया ना। मधुबन में तो इसका और भी विशेष अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर तो दुनिया का कोई प्रभाव ही नहीं है, सब योगी आत्माएं हैं। परिवार में रहते हो तो वहाँ बाबा कहते हैं हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। वो बगुले अवगुण देखने वाले, मछली खाने वाले बगले ऐसे ही होते हैं ना, और हंस मोती चुगने वाले, लेकिन रहना पड़ता है, हिसाब किताब है, कर्मों का संबंध है, तो निभाना भी पड़ता है। लेकिन अंतर में ये पता है कि अब तो हम रिटर्न जर्नी पर है, वापस जा रहे हैं, और जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में वापस जाना है। कौन सी स्थिति में आए थे? संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुणों से संपन्न, उस स्थिति में आए थे और वापस उसी स्थिति में जाना है। बीच का यह खेल हमने खेला, अब यह खेल पूरा हो रहा है, नाटक पूरा हो रहा है। नाटक सदाई नहीं इस प्रकार चलेगा, खेल सदाई नहीं चलता है। शाम होती है, घर जाना होता है। हर एक चीज की अपनी अवधि होती है, तो ये 5,000 साल का भी ड्रामा है। आज बाबा ने कहा कि कोई भी ये सारा ड्रामा देख नहीं सकता, क्योंकि दूसरा जन्म लिया तो पहले का जन्म का सब भूल जाएंगे। अगर किसी को सारे 84 जन्म याद रहे तो पता नहीं पागल हो जाए, किस जन्म में कौन सा संबंध किसके साथ था, क्या क्या किया, सब एकदम कुछ भी भूले नहीं तो पागल हो जाए। लोग पागल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सब बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, भूल ही नहीं पाते कुछ भी, तो एकदम नस भी फट जाती है दिमाग की, क्योंकि बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो ड्रामा अनुसार पिछला जन्म हम भूल जाते हैं, नई जन्म में आते हैं, फिर यहाँ से आत्मा गई शरीर छोड़ के, तो ये जन्म भी भूल जाएंगे। कई कहते हैं ना, क्यों हमको पूर्व जन्मों की याद नहीं रहती? हम कहते अच्छा है याद नहीं रहती, याद रहे तो पता नहीं क्या हो। पूर्व जन्म की पत्नी देखेंगे और इस जन्म की पत्नी साथ में है तो क्या होगा? पूर्व जन्म का जो बच्चा हो और इस जन्म का बच्चा, तो दिमाग ही फिर जाए। इसीलिए ड्रामा में ये भी नोंद है कि अगले जन्म में गए, पिछला जन्म भूल गया। तो बाबा ने हमें ये योगी जीवन दिया है, सतयुग में तो ये योगी जीवन भी भूल जाएगा, प्राय लोप सब कुछ हो जाता है। हालांकि आत्मा के अंदर तो ये सब संस्कार है, कोई भी पार्ट मिटता नहीं है, सब अविनाशी नूंद है। आज भी बाबा ने कहा ना, लोगों को हलचल में ले आओ ये सुना करके कि इतनी छोटी सी आत्मा और उसमें कितना विशाल ह्यूज, बाबा ने शब्द बोले इंग्लिश ह्यूज, जब बाबा बोलते थे ना ऐसे बाबा एक्शन भी करते थे, इतना बड़ा पार्ट है और है कितनी छोटी सी आत्मा। तो पहले शायद कोई ये न भी समझे, पहले नहीं समझता होगा कैसे कैसे इतनी छोटी सी और इतना कुछ ऐसा पार्ट कैसे होगा, छोटा बड़ा चाहिए ना तो बड़ा पार्ट होगा। लेकिन विज्ञान ने हम लोगों को अनुभव कराया है कि छोटी छोटी चीजों में भी वो शक्ति है ना, छोटी सी वो चिप होती है छोटी सी, पर उसमें कितनी मेमोरी होती है, छोटा सा पेन ड्राइव पर कितनी उसमें अंदर पेन वो मेमोरी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार आत्मा के अंदर ये सारा पार्ट है, लेकिन इस समय सारे कल्प में सबसे ऊंचा पार्ट है, देवताओं से भी ऊंचा पार्ट है। और इस समय हम दोनों पार्ट को देख सकते हैं, आसुरी का पार्ट और देवी पार्ट और अभी योगी पार्ट, या कहेंगे कि पहले भोगी थे तो भोगी फिर देवी अभी योगी। तो भोगी जीवन भी जी के देख लिया, भले इस जन्म में न भी हो, कई कुमारियां आ जाती है बाबा की जल्दी बन जाती है, लेकिन पिछले जन्मों का तो है ना संस्कार तो है ना। कई कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने ग्रस्त जीवन का अनुभव ही नहीं किया, चलो इस जन्म में नहीं किया, कई ग्रस्ती कहते हैं, कुमारियों को कहते हैं आपको क्या पता ग्रस्ती जीवन क्या होता है। तो भले न भी पता हो लेकिन पूर्व जन्मों का तो अनुभव है ना आत्मा के अंदर, इसीलिए ये कह नहीं सकते हैं क्या पता। तो इसीलिए बाबा ने हमें कहा वो तो है सब, लेकिन अभी कौन से पार्ट को इमर्ज करना है, अभी केवल योगी जीवन के पार्ट को इमर्ज करना है। देवताओं का जीवन तो बड़े ऐश का होगा, आराम का होगा, लेकिन अभी का जीवन आराम हराम बाबा कहते हैं ना, क्योंकि हमें बहुत कुछ पुरुषार्थ करना है, वहां तो जाकर के प्रारब्ध पाएंगे, बस मौज ही मौज होगा और तो कुछ होगा ही नहीं वहां। तो प्रारब्ध में तो कोई चिंता नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में तो ख्याल चलता है। और फिर बाबा कहते हैं ये योगी जीवन जीवन है, ऐसे नहीं दो चार घंटे का योगी जीवन होता है, योगी जीवन माना सारा ही जीवन योगी, ये नहीं दो चार घंटे का योग। तो कई कहते बस हम दो घंटा योग लगाते हैं, अर्थात दो घंटे के योगी और बाकी समय क्या भोगी। उस दिन बाबा ने कहा था या तो योगी है या तो वियोगी है, भले भोगी नहीं भी है पर वियोगी तो बन जाते हैं ना। बाबा भूल जाता है, देहधारियों में फंसे रहते हैं, तो भल भोगी जीवन नहीं है पर बाबा से तो वियोग हो ही गया, तो योगी नहीं है उस समय लेकिन क्या है वियोगी है। और जब वियोगी बन जाते हैं तो फिर बाबा को पुकारते हैं, और योगी हैं तो बाबा साथ हैं, पुकारने की जरूरत ही नहीं है। उस दिन या कल की मुरली का वरदान था या आज का याद नहीं, लेकिन बाबा ने कहा कि देखो भक्त लोग कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है और तुम बच्चे क्या कहते हो, बाबा साथ है। कल की मुरली थी। हाँ, तो एक प्रकार से ये सर्वव्यापी ही है। हम कई बार शिविर में ये बात बताते हैं, जो सर्वव्यापी नहीं है ये बात सिद्ध करते ना, तो पहले हम बताते हैं कि जितना हम परमात्मा को सर्वव्यापी मानते ना, उतना कोई नहीं मानता है। तो आश्चर्य खाते, अच्छा हमने तो सुना है ब्रह्मा कुमारियां तो परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मानती है। हमने कहा आपको क्या पता, जितना हम मानते उतना आप लोग भी नहीं मानते होंगे। तो कहते कैसे, हम कहते देखो हम कहां भी जाते हैं हम कभी नहीं अपने को अकेला समझते हैं। विदेश में भी जाएंगे, अभी भी जा रही हूं मैं कुछ दिनों के बाद, तो कई कहते अब अकेली जाओगी बहन जी, अकेली जाओगी। हम कहते नहीं अकेली तो नहीं, बाबा साथ है, अकेले कहां है, वैसे भी परिवार साथ है। यहां से प्लेन में चढ़ो और वहां उतारने उतरते सब मिलते हैं, तो इसीलिए सभी देशों में बाबा के सेंटर्स हैं और वो बुलाते हैं तो जाना होता है। तो इसीलिए हम कभी नहीं समझते कि हम अकेले हैं। अकेला वही समझेगा जिसको बाबा का साथ नहीं है। इसलिए बाबा का साथ है तो अकेले नहीं है, तो सर्वव्यापी है कि नहीं है, हा? साथ है ना, खाते हैं पीते हैं चलते हैं फिरते हैं, बाबा साथ है। सोते हैं तो भी बाबा साथ है, जागते हैं तो भी बाबा साथ है। वो कोई जीवन साथी जो अगर कोई है भी जीवन में, तो वो कोई हर वक्त का साथी थोड़ी होगा। पति दफ्तर चला गया तो पत्नी अकेली है ना, पति तो दफ्तर में बैठा है तो वो अलग, वो अलग हो गए। कहीं वो टूर पर गया तो कितने दिन अलग रहना, मना अकेले रहना पड़ता है। परंतु यहाँ तो जहाँ भी जाओ वो आपके साथ है, इसलिए अकेले तो कभी होंगे ही नहीं। परंतु साथ होते हुए भी और कोई साथ न हो, वो तो एक ही साथ हो और कोई नहीं। अगर इस दिल में और किसी को रख दिया तो फिर वो गायन है ना, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। दुनिया में तो कितनों को दिल दे देते हैं, पर दिल क्या देते हैं, दर्द ही लेते हैं ना, दर्द लेते हैं, दिल दे करके दर्द लेते हैं। क्योंकि हर वक्त यही चलता है कि पता नहीं हमको छोड़ न दे, पता नहीं मुझे धोखा न दे दे, पता नहीं लगा रहता है। तो हर वक्त शक की निगाहें, अनुमान की, वहम की अंदर में भावना, वो विचार चलते ही रहते हैं। पर ये हमारा माशु कैसा है जो क्या करेंगे, शक करेंगे क्या बाबा पर? बाबा तो कहता है आप सब मेरी सजनियां हो, मैं एक ही साजन हूं। तो कितनी सजनियां हैं। कई बार और बाबा के जैसे बच्चे बनते हैं तो कहेंगे इतने माँ पिता के बच्चे हैं या इतनी सजनियां, तो जितनी ज्यादा सजनियां उतनी और खुशी है ना। वहां एक और किसी से बना ली बनाया संबंध तो क्या हो जाता है, बात मत पूछो। परंतु ये ऐसा साजन है, ये ऐसा पिता है जो वो हमको नहीं छोड़ेगा। हम उसको छोड़ देंगे तो वो हमारी कमजोरी, पर वो हमको नहीं छोड़ेगा। दुनिया में तो है कि पता नहीं मुझे छोड़ न दे, पता नहीं मुझे छोड़ न दे, पर यहां ये साजन कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे फारकती दे देते हो, तुम डाइवोर्स दे देते हो, मैं नहीं देता हूं। मैं तो आया ही हूं तुमको लेने के लिए। पर बच्चे अगर डाइवोर्स दे भी देते हैं, फारकती दे भी देते हैं, तो भी बाबा का प्यार कोई कम नहीं होता है हमारे से, बच्चों से। फिर बाबा कहते हैं मैं तो साथ लेकर ही जाऊंगा, इतना वायदा पूरा निभाते हैं बाबा। तो इसीलिए जब बाबा इतना हम पर वारी जाते, कुर्बान जाते, वायदा निभाते तो हम अपने से पूछें कि हम कितना वायदा निभाते हैं। तो योगी जीवन माना एक के सिवा और कोई बुद्धि में न आए। तो कैसे पता चले कि एक के सिवाय और कोई भी बुद्धि में नहीं है? जब अंदर में कोई भी बात की खींच न हो। अगर और कोई बुद्धि में होगा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, चाहे कोई बात हो, अगर वो बुद्धि को खींचती है, माना एक बुद्धि में नहीं है। अगर हमको कोई भी चीज खींचती नहीं, खाली व्यक्ति नहीं खींचते, वस्तुएं भी खींचती है, वैभव भी खींचते हैं। किसके हाथ में देखा बहुत कीमती ये मोबाइल है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो जब तक मिले नहीं तब तक क्या होता है, बुद्धि खींचती है ना। ये मुझे कपड़ा चाहिए, ये मुझे फलानी चीज चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, दुनिया में तो बहुत कुछ है, और जब तक वो मिले नहीं तब तक बुद्धि खींचती रहेगी। वैसे दुनिया में ये कहते हैं कि जो चीज को आप बहुत याद करो तो वो चीज आपको मिल जाएगी, पावर ऑफ अट्रैक्शन है, आप याद करते करेंगे करेंगे तो ऐसे अब आएगी अपने आप। परंतु हमें अगर बाबा को याद करे तो और चीजें कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा को याद करे तो बाबा कहते सब कुछ मिल जाएगा। अगर एक चीज के पीछे जाएंगे तो वो चलो एक चीज मिल गई, पर बाबा छूट सकता है। एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक राजा था, उसने ऐलान किया अपने राज्य में कि मेरे पास बहुत चीजें हैं, और हर एक आकर के एक चीज पर हाथ रखे वो चीज उसकी। तो सारा राज्य उमड़ पड़ा, उनके महल में बहुत चीजें थी, तो कोई ने क्या उठाया, कोई ने क्या उठाया, कोई ने क्या उठाया, और सब उठा के चल पड़े। पर एक छोटी सी बच्ची थी, वो देखती रही देखती रही देखती रही, कुछ भी नहीं उठा रही थी, कुछ नहीं, पूरा टाइम सब देखती रही पर उठाए ही नहीं कुछ। तो उसको राजा ने कहा क्यों, उठाओ कुछ भी चीज उठाओ, हाँ जो आपको पसंद आए, जो पसंद आए उसको उठाओ। लेकिन उठाए नहीं, उठाए नहीं, उठाए नहीं। फिर आखिर राजा को तो आश्चर्य लगा कि आखिर इसको क्या चाहिए, इन्हें क्यों नहीं उठा रही है, तो बताओ आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, आप बोलो। तो उसने क्या किया, राजा को ही पकड़ लिया, समझ गए ना कि मुझे ये चाहिए। अभी राजा मिल गया तो माना सब कुछ मिल गया। तो ये कहानी है क्या पता, लेकिन राजा मिल गया माना एक 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 चीज थोड़ी चाहिए हमको, तो सब कुछ। पर राजा की है तो राजा मिल जाए तो उसकी सारी चीजें हमारी। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा मिला माना सब कुछ मिला, चाबी मिल गई बाबा की, बाबा रूपी चाबी मिल गई, सभी तालों की चाबी, तो सारे खजाने खुल गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इतनी लगन हो तब कहेंगे योगी जीवन। इन आंखों में केवल बाबा बसता रहे, वो बिंदु बाबा बसता रहे। जिससे प्यार होता है उसको दो स्थान दिए जाते हैं, एक होता है दिल और दूसरी होती आंखें। ये दो स्थान होते हैं जिससे प्रीत होती है उनको देते हैं जगह। माँ कहेगी ये मेरा बेटा तो मेरी आंख का तारा है, तो क्या होता है वो, जैसे आंख में तारा है माना जहां दिखाई दे रहा है, अगर वो तारा नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मेरा बच्चा मेरी आंख का तारा है, माना बेटा है तो जहान है, या ये तो, या कहेंगे कि मेरा बेटा मेरे दिल का टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा, तो टुकड़ा मानेंगे। तो इसीलिए जिससे प्रीत होती है उसको या तो दिल में जगह देते हैं या तो आंखों में जगह देते हैं। मीरा ने कृष्ण को आंखों में जगह दी, इसीलिए वो क्या कहती थी, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, यही उसकी बुद्धि में था। मुझे किसी ने मीरा की फिल्म दिखाई थी, बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मना भले उसने शादी की, राणा रानी बनी, बहुत कुछ की, लेकिन वो राणा को भी यही कहती है, मुझे गिरधर के लिए ये चाहिए, कुंडल चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, गिरधर के लिए खाना, पहले गिरधर को खिलाऊं, हाँ, सब कुछ माना गिरधर के लिए सब कुछ, कान्हा के लिए सब कुछ। तो राजा तो हंस रहा है कि देखो ये इतना सब इस महल में, तो जैसे इसको कुछ सुदबुद्धि नहीं है, बस खाली मुझे भी देखते तो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके लिए, बस कान्हा के लिए, कान्हा के लिए, तो ये तो जैसे पागल हो गई, दीवानी हो गई। तो वो तो कहती थी मैं तो दीवानी हूँ, दुनिया हमको कहे पागल और मैं कहूँ दुनिया पागल। तो क्योंकि उसकी आंखों में कृष्ण बसता था, उसको और कोई दिखाई नहीं देता था। तब जो आंखों में होगा वही सब जगह दिखाई देगा ना, इसीलिए सर्वव्यापी की बात जो निकली वो इसी के आधार से निकली है। मीराबाई को बस कृष्ण के सिवाय जितने भी कई ऐसे संत हो गए, इसलिए तुलसीदास ने भी आंख फोड़ दी, पर उसको अंदर में तो कृष्ण दिखाई देता था, भले इन आंखों से नहीं देखता था कुछ, लेकिन अंदर में कृष्ण दिखाई देता था। तो इसी प्रकार सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ दी, लेकिन सूरदास तो कृष्ण का भक्त था, तो भले इन आंखों से कुछ नहीं देखता था लेकिन कृष्ण उनको दिखाई देता था। आप समझते हो जिनको इन आंखों से नहीं दिखाई देता उनको अंदर भी कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी बात नहीं है, अंदर बहुत कुछ देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं, जब पहले पहले वो हमारी कैसेट नहीं बनी थी, कमेंट्री की कैसेट, तो कमेंट्री की कैसेट बनी थी तो बहुत पॉपुलर तो थी, अभी भी है। तो मैं गई थी बैंगलोर, तो वहाँ हम बैंगलोर में क्लास व्लास कराया, तो वहाँ पर दो ऐसे भाई थे जिनको दिखाई नहीं देता था, तो काला चश्मा पड़ा हुआ था, पर हमें क्या पता चले कि वो तो बैठे थे क्लास में। तो जब क्लास पूरा हुआ तो टीचर ने परिचय कराया कि ये वही बहन है जिसकी आप कैसेट सुनते हो, आवाज कमेंट्री की आवाज। तो वो तो खड़े थे केवल, और तो मैं उनके जैसे पास ही थी, तो मेरी नजदीक आ गई और मेरा ऐसे हाथ ऐसे करने लगे हाथ, तो मैं तो घबरा गई, यानी ये क्यों मेरे हाथ, क्या बात करे ना, हाथ क्यों लगा रहे हैं। लेकिन वो बहन ने मुझे इशारे से कहा कि इनको दिखाई नहीं देता है, तो जैसे फील कर रहे थे ना, वाइब्रेशंस ले रहे थे, नहीं तो आंखों से लेते, पर वो फील किया। तो कहा कि बहन जी वो जब हमने उस जब हम कोर्स कर रहे थे और हम हमारे क्योंकि दिखाई नहीं देता तो सुनाई तो देता है ना, तो सुन तो रहे थे और फिर कमेंट्री की कैसेट लगा दी। अब वो जो उन्होंने सुनी उसके बाद उनको साक्षात्कार हुआ, तीन लोकों का साक्षात्कार हो गया, एक को तीन लोक का साक्षात्कार हुआ, दूसरे को स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, और दोनों आर्टिस्ट थे, पता नहीं कोई बीमारी आई जो उनकी आंखें चली गई थी। तो उन्होंने तो क्या किया, तो उनको इतना सुंदर अनुभव हुआ वो मेडिटेशन में वो सुनते सुनते, तो उन्होंने कहा हम टीचर को कहा कि हमको ना कागज पेंसिल दो, अब दिखाई देता नहीं कागज पेंसिल क्या करेंगे, तो टीचर ने दिया, तो उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया, बिना देखे ड्रॉ करके दिखाया, ये तीन लोग जैसे हमारा चित्र है ना तीन लोगों का, वो तीन लोगों का चित्र ड्रॉ करके दिखाया, और लक्ष्मी नारायण और जैसे स्वर्ग का दृश्य, मतलब बहुत सुंदर, आर्टिस्ट तो थे दोनों ही आर्टिस्ट थे लेकिन आंखें नहीं थी। तो इन्होंने अंदर ही अंदर ये देखा और रोज क्लास में आते थे, तो यानी कहने का भाव है कि उनको दिखाई तो देता, अंदर ही अंदर आंख मन रूपी आंख देखती है या बुद्धि रूपी आंख देखती है। तो इसीलिए बाबा कहते इन आंखों में या मन बुद्धि की आंख में बस वो बिंदु चमके, जब हम कहते बिंदु रूप स्थिति, तो बिंदु रूप स्थिति का भी अर्थ क्या है, बस बिंदु ही दिखाई दे, मैं भी बिंदु बन जाऊं, बिंदु बस आंख का तारा, मैं बिंदु हूं, ये इतना बड़ा शरीर ये एकदम भूल जाए, जिसको बाबा देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। कई बार बाबा कहते हैं ये दुंब है, दुंब दुंब होता है ना, दुंब समझते हैं, किसको कहते हैं दुंब, बंदर की पूंछ को। तो यहाँ के जो बंदर है ना वो लंगूर है, इतने बड़े बड़े उनकी उनकी बड़ी बड़ी पूंछ होती है, जितना उनका शरीर नहीं है उनसे ज्यादा तो उनकी पूंछ है। तो कई ऐसे होते हैं ना बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो पूंछ भी उनकी बहुत मोटी मोटी बंदरों की, तो जब उठते हैं ना तो पूंछ को पकड़ के उठते हैं, क्योंकि ऐसे कई बार उनको देखते हैं। तो दुंब है, तो ये शरीर भी क्या है, दुंब है ना, आत्मा के साथ साथ है, लेकिन इस देह को भी हमें भूलना है। तो योगी जीवन में ये देह भी याद ना आए, देह देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के इस संसार की जो भी बातें हैं, कोई भी चीज हमें खींचे नहीं। बाबा ने पता नहीं कौन सा साल था, 80s में बहुत मुरलियां चलाई थी, जैसे सप्ताह 7 मुरलियां चली थी त्याग पर, याद है, देखी सुनी आपने हा? त्याग पर, देह के संबंध, देह के पदार्थ, एक एक का कैसे बुद्धि से त्याग हो। पर फिर भी इतना सब कुछ बाबा कहते हुए भी बाबा कहते छोड़ो कुछ भी नहीं, क्योंकि छोड़ देना ये भी सहज है, फंस जाना ये भी सहज है, लेकिन छोड़ना भी नहीं और फंसना भी नहीं। बाबा कहते छोड़ो भी कुछ नहीं, नया जोड़ो भी कुछ नहीं, और फंसो भी कहीं नहीं। तो न छोड़ो न नया जोड़ो न फंसो, पर जो है उसको निभाओ निभाओ। निभाना भी दो प्रकार से होता है, एक होता है दुखी मन से निभाना, क्या करूं निभाना पड़ता है, और दूसरा है साक्षी होकर के निभाना, है साथ में लेकिन साक्षी है साथी पर साथी और साक्षी बन जाते हैं साथ साथ, तो इसको निभाना कहेंगे, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं, हिसाब किताब जो है वो तो चुकतू करना ही है, चलो छोड़ के चले भी, अगर हिसाब किताब अगर है तो वो खींचेंगे ना कि नहीं खींचेंगे, छोड़ दिया माना हिसाब किताब पूरा हो गया क्या, कभी नहीं, क्योंकि हिसाब किताब खींचेंगे, इसीलिए बाबा कहते छोड़ना भी नहीं है। लेकिन ऐसा साक्षी होके रहना है जो फंसना भी नहीं है, ये योगी जीवन की विशेषता है, क्योंकि सब संबंध एक से है। तो मम्मा से जब ये बात पूछी गई कि मम्मा ये कैसे होगा, तो मम्मा ने कहा उसकी बहुत सहज युक्ति है कि हर वक्त समझो मेरा ये अंतिम, मेरी अंतिम घड़ी है, हर वक्त मेरी अंतिम घड़ी है। अंतिम घड़ी के समय कोई और याद आएगा क्या, जाना है पता है जाना है, हाँ, और कई साल जीना है तो बुद्धि यहां वहां जाएगी, बस अभी अभी गए अभी गए अभी जाना है, तो बुद्धि उपराम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। कई इस पर चुटकुले देते हैं, एक व्यक्ति ने एक मना कहीं ये बताई तो एक भाई ने हमको चुटकुला सुनाया इस पर। मैंने कहा चुटकुला क्या होगा इस पर, तो कहा कि देखो एक व्यक्ति था, हाँ, उसने बहुत दुख दिया था कईयों को, बहुतों को दुख दिया था। अब उसका ऐसा उसको बीमारी आई कुछ, जो डॉक्टर ने कहा कि बस अब तुम बचोगे नहीं, अभी तो मना नहीं बचोगे। तो उसको लगा मैंने इतनों को दुख दिया है, इतनों को दुख दिया है, तो अभी तो इस सब की मुझे सजा मिलेगी, तो मैं क्या करूं। तो किसने उसको कहा कि अच्छा इन सब को मानो हम बुला लेते, आप नाम बताओ हम उनको बुला लेते हैं और आप उनसे क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो। तो सबके नाम लिए, तो उनसे उन सपने सोचा कि चलो बेचारा अभी मरने पर है, क्षमा मांगने के लिए उसने बुलाया है, चलो हम जाते हैं। तो एक एक करके गया और उनके आगे रोता रहा, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, ताकि क्षमा मांगने से वो हिसाब किताब चित्तू हो जाएगा। वो रोता रहा, तो उसके बाद क्षमा करो, तो सबने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया ना, रो मत, क्षमा कर दिया, चलो आप सब क्षमा कर दिया। अचानक वो शांत हो गया और कहता है, लेकिन देखना, अगर मैं मरा नहीं ना तो मैं सबका बदला लूंगा। समझ गए ना? अगर मैं मरा नहीं तो सबका मैं बदला लूंगा, मतलब कुछ जो कहा, तो मरना है इसलिए क्षमा करो, पर नहीं मरा तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ, देखो ये तो ठगी हो गई ना, तो क्षमा करो और भूल जाओ ना, या क्षमा करो क्योंकि मर रहा हूं और नहीं मरूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। सच्ची बात, हम तो देखते, अगर ये देखिए अभी मैं आत्मा शरीर छोड़ूं, मुझे कौन याद आएगा? कोई देहधारी याद आएगा? कोई वस्तु याद आएगी? धन याद आएगा? कौन याद आएगा? अगर कोई याद आएगा, माना कि अभी वो लगाव गया नहीं है, अभी हम जीते जी मरे नहीं है, अभी तक योगी जीवन नहीं है, अभी तक बाबा से हम वियोगी है। तो योगी जीवन अर्थात कुछ भी बुद्धि में नहीं आया, और जिस समय जो बात याद करनी है वो आए, ऐसे नहीं कि नहीं आए, आवश्यकता अनुसार, जिम्मेदारी अनुसार तो वो बात तो आएगी। अभी यहाँ आना है हमको, तो अभी हम कुछ भी याद न करूं तो ऐसे बैठी रहूंगी, लेकिन नहीं, क्लास में पहुंचना है, जिम्मेदारी है तो उसके लिए सोचना तो पड़ेगा ना। लेकिन हम उसमें फंसे हुए नहीं है, अंदर में उसकी कोई चिंता नहीं है, हाई में नहीं पहुंची तो कुछ न हो जाए, ऐसे न हो जाए, ये न हो जाए, डर नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी हमें पूरी निभानी है, लेकिन सब कुछ करते एक सेकंड में नहीं आ रहे। इसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, कर्म करते भी उस कर्म के प्रभाव में नहीं आना। कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है, सांस लेना ये भी तो कर्म तो है ना, तो इसलिए कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते, लेकिन कर्म करते हुए कर्मातीत अवस्था अर्थात उस कर्म के प्रभाव में नहीं आना। कैसे प्रभाव में आते? कोई भी मैंने कार्य किया तो बहुत अच्छा करना है, चलो ये लगन अच्छी थी, मुझे अच्छा करना है, लेकिन वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ उसका फिर क्या करते, दूसरों से पूछते। मैंने क्लास कराया तो मैं सदस्य जनों से पूछ, मैंने अच्छा क्लास कराया, अच्छा क्लास था, अच्छी पॉइंट्स दी ना, वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छी। खाना पकाया तो खाना पकाने के बाद सबने खाया, कैसा लगा आपको, ये सब्जी कैसे लगी, अच्छी थी, वो कहेगा जरूर अच्छी थी, कौन कहेगा वो अच्छी नहीं थी। भले सिंपल होगी लेकिन पूछ रहा है कोई, माना वो तारीफ चाहता है, वो तारीफ चाहता है कि हाँ आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, बहुत अच्छा खाना बनाया, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना कैसा लगा खाना, अच्छा लगा, इसका मतलब है कि जिस जो पूछ रहा मन उसने बनाया है, नहीं तो अगर परोस रहे ना, अभी यहाँ ऊपर परोस रहे हैं, आप पूछेंगे क्या खाना अच्छा लगा, भाई जो है वही दे रहे हैं। परंतु जो बनाता है ना उसको लगता है कि मेरी प्रशंसा हो क्योंकि मैंने मेहनत तो की है, तो पूछेगा मैंने ठीक बनाया, मैंने अच्छा बनाया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर प्रशंसा की इच्छा भी रखी, इसका मतलब वो कर्म में हम फंस गए, क्योंकि सफलता की इच्छा रखी पर कर्म किया, फल बाबा पर छोड़ दिया, बाबा ने जैसे कराया। तो बाबा ने जैसे कराया तो बाबा जाने, अगर ठीक नहीं था बाबा हमने मेहनत अच्छी की परंतु फल मुझे चाहिए, इसके लिए मैं प्रश्न करूं कैसा था, अच्छा था, वो अच्छा जरूरत ही नहीं है, हो गया खत्म, दूसरी घड़ी वो बात भूल गए। तो योगी जीवन माना हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी, हर सेकेंड समझो, और कुछ भी याद ना आए, और सब कुछ करते हुए भी एक सेकेंड में न्यारे हो सके, ये है योगी जीवन। क्योंकि इसी से ही हमारी संपन्नता, संपूर्णता आएगी। ब्रह्मा बाबा को ऐसे ही देखा, मम्मा को ऐसे ही देखा, न्यारी अवस्था। आपको मालूम हो कि 6 मास पहले जैसे मम्मा का डिक्लेयर हुआ उनको कैंसर है, तो डॉक्टर ने बता दिया कि काफी फैल गया है, क्योंकि उस समय कोई दवाइयां भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, कि ये तो फैल गया, 6 मास से ज्यादा नहीं रह सकेंगे। तो रमेश भाई अनुभव सुनाते, क्योंकि मम्मा रमेश भाई के घर में रही थी, तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, नीला बहन उनकी जो सिस्टर थी वो बाबा मम्मा सबके देखते थे, वही डॉक्टर थी। तो बाबा से पूछा रमेश भाई ने, बाबा ये मम्मा को बताएं कि भाई 6 मास से ज्यादा नहीं रह सकेंगे। तो बाबा ने कहा भले बताओ, मम्मा तो न्यारी प्यारी है। तो रमेश भाई ने बहुत ही जैसे हिम्मत करके मम्मा को बताया, पर मम्मा तो पहले से समझ गई थी, और मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर इतना सब कुछ पता होते हुए भी मम्मा तो वैसे ही न्यारी थी, न्यारी और प्यारी थी, और कैसे मम्मा को देखते थे, इतनी व्याधि होते हुए भी मम्मा का चेहरा इतना प्रसन्न था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभी इनकी मना ज्यादा नहीं जिएंगी। तो क्या कारण था, क्योंकि वो हर समय विदेही स्थिति में रहती थी, किया फिर न्यारी हो गई, किया न्यारी हो गई। बड़ी दीदी का भी यह लास्ट दिनों में हमने अनुभव किया, दादी जी का भी किया। बड़ी दीदी तो यही कहती थी अब घर जाना है, अब घर जाना है। समझो दीदी के पास कोई गया, कोई समस्या लेकर, कोई बात, ये मेरा ये तेरा, न कई बातें होती है, तो दीदी कहती थी छोड़ो अब घर जाना है, अब घर जाना है। हाँ छोड़ो इस बात को, क्यों इसके पीछे इतना जाते हो। तो क्योंकि दीदी भी इतनी न्यारी हो गई, इतनी न्यारी हो गई जो बात मत पूछो। बड़ी दादी को भी हम देखते थे, कैसे बड़ी दादी के लास्ट दिनों में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, और इतनी ऊंची स्थिति। बहुत सोचते थे दादी को ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये पूछेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पता नहीं क्या क्या सोच करके जाते थे, और जैसे ही दादी के सामने गए न सब भूल जाता था, सब कुछ भूल जाता था, सब कुछ, क्या पूछे पता ही नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची स्थिति दादी की देखते थे। जो वो छोटी छोटी बातें तो पता नहीं जैसे कि कोई काम की नहीं थी, बताते हुए जैसे ऊंचे हवाई जहाज जाता है तो सब बड़ी बड़ी इमारतें भी क्या लगती है, छोटी छोटी लगती है। तो दादी जी की स्थिति के सामने वो तो कुछ भी नहीं लगता था। तो सचमुच हम देखते थे कि जो बाबा कहते हैं कैसे इन्होंने इतना पालन किया है, ये कर्मातीत अवस्था की निशानी, ये संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता के लिए बाबा मिसाल देते हैं ना, हलवे का मिसाल, क्या है हलवे का मिसाल, पहले जब गेहूं आटा डालते हैं या बेसन डालते हैं, जो डालते हैं घी डालते हैं, पानी मतलब जो भी डालते, कितना भारी होता है, पर जैसे वो पकता जाता है तो क्या होता है, सब कढ़ाई छोड़ता जाता है, घी छोड़ता जाता है, सब कुछ छोड़ता जाता है और हल्का होता जाता है। जितना हल्का होता जाता है, सब छोड़ता जाता है, तो मानो अभी पक्के तैयार हो रहा है। तो आत्मा भी हल्की बनती जा रही है, पकती जा रही है, संपन्न बनती जा रही है, संपूर्ण होती जा रही है, न्यारी प्यारी होती जा रही है, ये अनुभव हो। क्योंकि ये सारे विकार ये सब फंसाने वाले हैं, सब फंसाने वाले हैं। क्योंकि विकर्म कराते ना, एक एक विकार के वशीभूत अगर कोई है तो वो कर्म तो विकर्म ही बनता है ना, किसी भी विकार के वशीभूत। खाली काम और क्रोध थोड़े है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, नफरत भी है, द्वेष भी है, कितने सारे। उस दिन बताया था ना, खाली क्रोध की अग्नि में थोड़ी इंसान जलता है, कितनी अग्नियां हैं। वो चिता पर तो कोई शव जलता है, मुर्दा जलता है तो एक ही बार, पर जीवन में क्रोध की भी चिता है, अग्नि है ना, फिर चिंता की भी चिता है, सारा दिन चिंता 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 में जलते रहते हैं। ईर्ष्या की भी चिता है, सारा दिन ईर्ष्या ईर्ष्या, इसको है मुझे भी चाहिए, इसको है मुझे भी चाहिए, ये आगे क्यों, मैं क्यों नहीं, ईर्ष्या। नफरत की भी अग्नि है, सारा दिन नफरत ही नफरत। तो बाबा कहते हैं ये इन सब अग्नियों से पार हो जाओ, बस योग की अग्नि तपाओ, मुझे पावन बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे वापस जाना है, मुझे देवता बनना है, और दूसरों को मत देखो, बस तब संपूर्ण बन सकेंगे। हम तो मम्मा का बहुत मिसाल देती थी, हमारी मनोहर दादी जी, हमारे वरिष्ठ भाई बहने, रमेश भाई ने एक बार क्लास कराया था कि बॉम्बे में दादी मम्मा रहती थी, काफी समय रही मम्मा, तो मम्मा को एक दिन थोड़ा घुमाने ले गए थे, तो घुमाने ले गए थे तो घुमाना माना कि दिखाना है, तो एक जगह वो लाइट्स बहुत थी, बहुत अच्छी, मैंने एक बोर्ड था उसमें लाइट लाइट बहुत थी, तो वहां पर तो जैसे गाड़ी में जा रहे थे तो मम्मा को कहा रमेश भाई ने, मम्मा आपने वो देखा? मम्मा ने कहा क्या देखा? मम्मा वहीं से तो हम गुजरे, आपने देखा? कहती मैं ये सब नहीं देखती हूँ, मम्मा ने कहा, क्योंकि क्यों हम टाइम वेस्ट करें, ये देखूं वो देखूं वो देखूं, जिससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कुछ लेना तो है नहीं, तो इसलिए लेना नहीं है तो उसमें बुद्धि जाए क्यों? तो इसलिए बुद्धि जाए ही नहीं। कई अपनी परीक्षा लेते हैं कि देखे बुद्धि जाती है कि नहीं जाती है, जानबूझ करके करेंगे देखे ना। वो ये एरिस्टोटल या सोक्रेटिस एक बहुत बड़ा फिलोसोफर होकर के गया, तो उसकी मैं किताब पढ़ रही थी, तो बहुत बड़ा फिलोसोफर था, तो वो रोज क्या करता था, दुकानों में जाता था और रोज दुकानों का चक्कर लगाता था, खाली देखता रहता था देखता रहता था, लेकिन कभी कुछ खरीदता नहीं था, कुछ भी खरीदता नहीं था। तो एक दिन एक दुकानदार ने उसको कहा कि आप रोज यहाँ आते हो, रोज चक्कर लगाते हो, पर कभी कुछ खरीदते नहीं हो, क्या आपके पास पैसा नहीं है? इच्छा है पर पैसा नहीं होता है ना, तो इच्छा होती है पर खरीदते नहीं है, आपको कुछ भी चाहिए आप ले लो, कोई बात नहीं, मैं रोज आपको देखता हूँ। और उसी वहीं खड़ा होता है, तो उसने कहा नहीं मुझे खरीदना है लेकिन पैसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर क्यों रोज आते हो जब खरीदना भी नहीं है और पैसा नहीं, ऐसी ये बात भी नहीं, फिर क्यों रोज आते हो? तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं इसलिए आता हूँ मेरी अपनी परीक्षा लेने के लिए, कि ये चीज के बिना मैं रह सकता हूँ? तो अंदर में आता है हाँ रह सकता हूँ, ये चीज अगर मेरे पास नहीं है तो इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ, तो रह सकता हूँ, माना जरूरत नहीं है तो मैं अपनी परीक्षा लेता हूँ कि इनके बिना भी मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, तो मैं उस परीक्षा में पास हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं रोज अपनी परीक्षा लेने आता हूँ, अपनी परीक्षा लेने आता हूँ। नहीं तो हम बहनों को देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, कहीं गए, अरे ये चीज भी लो, ये चीज भी लो, ये चीज भी लो, और फिर भंडार अंबार पड़ा रहता है घर में, कहाँ रखा है पता ही नहीं, न यूज होना है न कुछ, होता है ना बहने, हंस रही है बहने पिताजी कहेगा, पति कहेगा, ये क्या तुम लेकर के आई हो, इतना तुमने खर्चा किया, तुमको पता है कितनी महंगाई है। अब कमाता तो पति है, और वो बस गई शॉपिंग करने गई, जो काम की चीज नहीं है वो भी लेकर के आई और पड़ी रही, बस खुशी है कि है मेरे पास है। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे खुशी इतनी होती कि हाँ मेरे पास बहुत ज्ञान का खजाना है, बहुत ज्ञान का खजाना है, बहुत देखो कितनी किताबें भरी पड़ी है, देखो मैंने कितनी डायरियां लिखी है, कितना मैंने ये खजाना भरा है। पर पूछो कुछ याद भी है, वो डब्बे में ठिकरियां, याद कुछ नहीं, खाली किताबें देख करके खुश होते हैं, मैंने इतनी देखो डायरियां भरी है, इतनी डायरियां भरी है, पर जीवन में तो वो है नहीं कुछ। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं डायरी भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी क्यों बोझ उठाओ, परंतु अपनी जीव अपना जीवन बनाओ। तो इसीलिए हमें वो भी परीक्षा नहीं लेनी कि इसके बिना मैं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, जरूरत नहीं ऐसी परीक्षा लेने की, देखते हुए भी नहीं देखो, ये है हमारी स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये दो दो ये इंद्रियों के लिए बाबा कहते हैं, क्योंकि देखना तो बंद नहीं होगा ना, आंखें है तो देखाई तो देगा, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्योंकि आप किसी का मुख तो बंद नहीं कर सकोगे, तो सुनाई तो देगा ही, परंतु हम सुनते हुए भी न सुने, ये हमारे ऊपर है, उसको नहीं हम रोक सकते, उनको नहीं कह सकते ऐसे क्यों कहते हो आप मेरे लिए, वो कहते कहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत के अंदर, तो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो, परंतु चलो ऐसी बात है तो वो मान हानि का केस कर लेते हैं कि ऐसे कैसे कह दिया आपने मेरे लिए, आपके पास क्या प्रमाण है जो आपने ऐसे मेरे नाम से कर दिया, तो FIR भी दर्ज करा लेते। आजकल तो पता नहीं क्या क्या है संसार में, तो दुनिया में तो बहुत कुछ है, परंतु आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कहेगा फ्रीडम, भारत तो स्वतंत्र है ना, प्रधानमंत्री के लिए भी कहेंगे, किसके लिए भी कहेंगे, और भगवान के लिए तो क्या नहीं कहते दुनिया में, हे भगवान तुम कितने बेरहमी हो, कितने बहरे हो, यहाँ तक भी कह देंगे, सुनता नहीं है भगवान मेरा, तो बेरहमी भी बन गया तो बहरा भी बन गया, क्योंकि अंदर में बहुत स्वार्थ है। तो भगवान भी सुनते हुए क्या करता है, कुछ करता है, सजा देता है क्या, तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, ठीक है बाबा तो मुस्कुराता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि आगे चल करके बहुत बातें आएंगी और भी आएंगी, चारों तरफ से परीक्षाएं आएंगी, इसलिए अंतर को हमें शक्तिशाली बनाना है, बाहर से नहीं, बाहर से हम क्या बना सकेंगे, कितना क्या दिखाएंगे, हम कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी को क्या सजाएंगे अपने आप को। हाँ बाबा कहते सिंपल लिविंग, सिंपल, परंतु अंदर को शक्तिशाली बनाते जाओ, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, एक सेकंड में अशरीरी बन सको, एक सेकंड में, क्योंकि अंत के समय एक सेकंड की परीक्षा होगी, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, होगी एक सेकंड की परीक्षा, लेकिन अगर अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय सहज न्यारे नहीं बन सकेंगे, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे, इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जो अंत के समय बस बाबा के सिवा और कुछ भी याद न आए, और वो अभ्यास चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये पांच स्वरूपों की याद कदम कदम पर, बाबा कहते हैं, और ये बिंदु स्वरूप की स्थिति अर्थात वो अशरीरी स्थिति, वो विदेही स्थिति, न्यारी प्यारी स्थिति, इन आंखों की बिंदु में शिव बाबा बिंदु समाया हुआ, वो बिंदु ही दिखाई दे और मैं बिंदु बनकर बिंदु को ही याद करूं और बिंदु लगाऊं, बिंदु बनना है, बिंदु को याद करना है और बिंदु लगाना है, है ना। वो गीत भाई, गीत बजाना, वो बिंदु वाला। बस ये तीन बिंदु अगर सदा याद रहे तो एक तो आगे कोई विकर्म नहीं होंगे, समय श्वास संकल्प शक्ति सब बच जाएगी, और दूसरा जितना बिंदु लगाते जाएंगे तो क्या होगा, हाँ उतने ही हमारी कमाई बढ़ती जाएगी। जीरो जीरो, एक के बाद जितने जीरो लगाएंगे उतना क्या होगा, एक का दस, दस का सौ, सौ का हजार, दस हजार बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम में पदम की कमाई, पर वो पदमों की कमाई कब होगी, जब बिंदु लगाएंगे। देखो आपके टीचर का नाम ही बिंदु है, बिंदु है, तो बिंदु बिंदु को याद करेंगे ना, हा? तो आपके लिए तो बड़ा सहज है बिंदु बनना। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको उनको चार बिंदु याद रहते हैं, तीन बिंदु तो है ही है, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, तो हमारे टीचर भी बिंदु। बहुत अच्छी बात है, तो इसीलिए हम बस हर वक्त वो बिंदु की याद रहे, परंतु वो बिंदु बनना एक सेकंड में हो जाऊं, एक सेकंड में न्यारी बन जाऊं, एक सेकंड में उपराम हो जाऊं। जो बाबा कई बार कहते हैं क्वेश्चन लगाना तो बहुत सहज है, बिंदु लगाना मुश्किल है। ऑन द कंट्री होना क्या चाहिए, प्रश्न चिन्ह करना, ये थोड़ा मुश्किल होना चाहिए क्योंकि टेढ़ा है, और बिंदु तो बहुत सहज है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, प्रश्न लगाना सहज लगता है, ऐसे क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कौन, कब, कहाँ, और बिंदु लगाना मुश्किल लगता है। कई बार बाबा पूछते हैं साइलेंस में जाना सहज है, आवाज से परे जाना सहज है या आवाज में आना सहज है, तो बच्चे कहते हैं बाबा आवाज में आना सहज है, पर होना क्या चाहिए, आवाज से परे जाना सहज होना चाहिए ना, सोचने की जरूरत ही नहीं, आवाज से परे एक सेकंड, पर सोच बंद ही नहीं होते। इसलिए आवाज में भी आना पड़ता है, होना चाहिए कि आवाज से परे जाना सहज होना चाहिए, बिल्कुल। भाई कहा गया चार दिन मौन रहो, कौन थे जिन्होंने सचमुच पूर्ण मौन निभाया, हाथ उठाओ। अच्छा भाई इनको तो आप इनाम देना, बिंदु बहन ये चार जने केवल कहते हैं, हाँ दोबारा हाथ उठाओ जिन्होंने पूरा मौन निभाया। अच्छा एक दो तीन चार पांच, देखो बहनों में एक ही, हाँ ये फिर से हाथ उठाओ भाई, एक ही दिन बना, नहीं 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 चारों दिन, चारों बिल्कुल एकदम मौन। अच्छा ये साक्षी है कहती है, वेरी गुड भाई, इनको आप जरूर इनाम देना, वहां वापस जा करके इनको आप इनाम देना। क्या नाम है आपका, एक दिन, नहीं 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 चारों ही दिन इसने देखो पूरा निभाया। अच्छा क्लास बंद होने के अभी तक खोला नहीं है, मना देखो ये कहती ये साक्षी है। ये कोई नम भी माने पर ये बहुत अच्छी बात है, तो देखो एक ही पास हो गए, इनके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ चलो अभी, लेकिन लक्ष्य तो लेकर गए ना, कभी ऐसे आप वापस जाएंगे हफ्ते में एक दिन रखो भाई, आज मेरा मौन है, हफ्ते में एक दिन मौन रखो, या रोज शाम को बिल्कुल मौन रखो, या सवेरे के समय कुछ घंटे, या शाम के समय कुछ घंटे, पर लक्ष्य रखो कि मुझे बिल्कुल मन का भी मौन रखना है। हमारे तो हमने तो ये एक भाई था, वो अपना अनुभव सुना रहा था कि मैंने अपने सब मित्र संबंधियों को ईमेल कर दिया या फोन में बता दिया कि फलाने टाइम से फलाने टाइम तक मेरे से कोई फोन पर बात नहीं करे, मैं जवाब नहीं दूंगा। नोट वो टाइम बता दिया, सवेरे 8 बजे तक मेरे से कोई बात नहीं करे, शाम को 6:30 से 7:30-8 बजे तक कोई मेरे से बात नहीं करे, इसलिए मोबाइल ही मैं स्विच ऑफ करके रखूंगा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। तो पहले थोड़ा उसको भी मुश्किल लगा, दूसरों को भी मुश्किल लगा, लेकिन बाद में जब सबको पता चल गया तो उन्होंने महसूस कर लिया कि भाई देखो इस समय ये मिलेगा नहीं, ये बात नहीं करेगा, तो उन्होंने भी छोड़ दिया नेचुरली। पर ये अपने ऊपर अडिग रहा, कईयों ने कहा ऐसे कैसे होगा, अब ये आप से तो काम होता ये होता, उसने कहा नहीं ये मुझे बाबा से अंदर से प्रेरणा आती है। अब जो कर सके, क्योंकि कारोबार भी तो बहुत होता हम जानते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर है कि हम कितना अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, अपनी स्थिति को न्यारा प्यारा बनाते हैं, अपने को उपराम रख सकते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई वही बुद्धि में रह सकता है, अन्य बातों से हम फारिग हो जाते हैं, किसी में परपंच में नहीं, न पर चिंतन हो, बाबा कहते 4 पर निकालो 1 पर जोड़ो, 4 पर कौन से निकालो, पर चिंतन, पर दर्शन, पर ग्लानी और पर मत, पर ग्लानी या पर निंदा, तो पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन और पर ग्लानी, ये 4 पर निकालो, पर 1 पर लगाओ, कौन सा, परोपकार। परोपकार हर आत्मा का कल्याण हो, किसी का भी अकल्याण का कभी भी सोचना नहीं है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। अगर कुछ अकल्याण किया किसी का, किसी को दुख दिया, तो बाबा कहते 100 गुना सजा मिलेगी। तो धर्मराज से भी डरना नहीं है, लेकिन सच्ची मित्रता भी धर्मराज से तब होगी जब धर्मराज भी सलूट मारे, हाँ, कि पास विद ऑनर होके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अपनी यहाँ से बना के जाना है, बहुत ऊंची बातें हैं। बाबा कहते ना ऐसे ना हो कि वहां जाकर कहो क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं नहीं करो, कैसे करूं नहीं करो, ऐसे वाय 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 नहीं कहो, बाबा कहते फ्लाई, और वाह वाह के तो गीत गाएंगे ही ना, सभी यही तो गाएंगे, कुछ भी ऐसी बात हो जाए हाय हाय नहीं, लेकिन वाह वाह बस। तो देखो इतनी ऊंची स्थिति बन जाएंगी, उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा, सदा मुस्कुराते रहेंगे, सबको सुख देते रहेंगे और उड़ते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए अभी हम सब इसका अनुभव करें। कोई 2 बहनें आ सकती है। तो चलिए अभी हम उड़ती कला का अनुभव कैसे करें, विदेश स्थिति कैसे बनाएं, बिंदु रूप की स्थिति कैसे अनुभव करें, पहले तो मन को एकदम शांत बना दो। शांति के सागर में चले जाओ। एकदम शांत, सागर की लहरों में भी नहीं लहराना है, लेकिन तले में चले जाना है। इस देह से न्यारी मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति धाम मुझ आत्मा का निज धाम है। शांति का सागर मुझ आत्मा का प्यारा पिता है। बिंदु में सिंधु को देखो। जितना ही अति सूक्ष्म उतना ही बेअंत। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं। मैं आत्मा बिंदु सिंधु में समा जाऊं। Thank you. मेरे सर्व संबंध एक के साथ है। प्यारे बाबा, आप ही मेरे सर्वस्व हो। सब रस एक में ही समाये हुए हैं। मैं आत्मा, इंद्रिय जीत हूँ, माया जीत हूँ, प्रकृति जीत हूँ, कितनी निर्संकल्पता है। मैं आत्मा, शिव बाबा के सानिध्य में भरपूर हूँ। संतुष्ट हूँ, निर्संकल्प हूँ, कितनी शांति। कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। मेरा तो एक, शिव बाबा दूसरा ना कोई। प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपकी ही थी, आपकी ही हूं और सदा आपकी ही होकर रहूंगी। आपसे कितना प्यार मिल रहा है, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया बाबा। आपसे ही सर्व संबंधों का प्यार मिल रहा है। Thank you.